आगे रुकू नंबर 11, 94 से 100। टॉपिक है गुमराहों का आलम नाक इंजाम। वमा मना ना सही उमिनु इस जाहुमुल खुदा। लोगों के पास हिदायत पहुंच चुकने के बाद भी ईमान से रोकने वाली सिर्फ यही चीज़ रही कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ने एक इंसान को ही रसूल बनाकर भेजा। आप कह दें कि अगर ज़मीन में फरिश्ते चलते फिरते और रहते बसते होते तो हम भी इनके पास किसी आसमानी फरिश्ते ही को रसूल बनाकर भेजते। कह दीजिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह का गवाह होना काफ़ी है, वो अपने बंदों से खूब आगाह और बाखूबी देखने वाला है। अल्लाह जिसकी रहनुमाई करे वो तो हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो राह से भटका दे तो नामुमकिन है कि तू इसका मददगार इसके सिवा किसी और को पाए। ऐसे लोगों का हम बरोज क़्यामत ओंधे मुँह हशर करेंगे, यहाँ तक कि वो अंधे गूंगे और बहरे होंगे। इनका ठिकाना जहन्नम होगा, जब कभी वो बुझने लगेगी हम इन पर इसे और भड़का देंगे। यानी टेम्परेचर डाउन होगा तो हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम। ये सब हमारी आयतों से कुफर करने और इसके कहने का बदला है कि क्या जब हम हड्डियाँ और रेजे रेजे हो जाएंगे फिर हम नई पैदाइश में उठ खड़े किए जाएंगे? क्या उन्होंने इस बात पर नज़र नहीं की कि जिस अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है वो इन जैसों की पैदाइश पर पूरा कादिर है? इसी ने इनके लिए एक ऐसा वक्त मुकर्रर कर रखा है जो शक व शुबे से यकसर खाली है, लेकिन जालिम लोग इनकार किए बगैर रहते ही नहीं। कह दीजिए कि अगर बिलफर्ज तुम मेरे रब की रहमतों के ख़जानों के मालिक बन जाते तो तुम उस वक्त भी इसके खर्च हो जाने के खौफ से इसको रोके रखते, और इंसान है ही तंग दिल। अगर ऑक्सीजन हमारे हाथ में होती टैक्स लग चुका होता, बिक रही होती ऑक्सीजन और लोग बेचारे मर रहे होते गोते खा खा कर। शुक्र कीजिए अल्लाह ने बारिश, पानी, हवा ये सब कुछ अपने हाथ में रखा है, वरना बंदे तो बंदों को जीने का भी हक ना देते। तो क्या अमल के नुक्ते हैं? हिदायत पाने की कोशिश करना, गुमराह नहीं होना, अल्लाह की आयात का इनकार नहीं करना, बास बादल मौत का इनकार नहीं करना, और तंग दिल नहीं होना, और माल को रोक कर नहीं रखना। आगे है जी आयत 101 से 111। बारवा रुकू है। क़ुरान पाक की अज़मत और तासीर और सूरत के अतबार से यह आखिरी रुकू है। वलक़द आतैना मूसा तिस्सअ आयातिन बय्यिनात। यहाँ कुरान का अंदाज देखिएगा, सूरत बनी इसराइल है। पहला भी रुकू बनी इसराइल की हिस्ट्री अरूज और जवाल की कहानियों का था, और अब आखिरी भी, और बीच में उम्मत मुस्लिमा को एक कम्प्लीट पैकेज दे दिया गया कि अपना लॉ, अपना कानून इन असूलों पर बना लो तो तुम्हारे साथ बनी इसराइल वाला मामला नहीं होगा। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मौजज़े बिल्कुल साफ साफ अता फरमाए। तो खुद ही बनी इसराइल से पूछ ले कि जब वो इनके पास पहुंचे तो फिरौन बोला कि मूसा मेरे ख्याल में तो तुझ पर जादू कर दिया गया है। मूसा ने जवाब दिया, ये तो तुझे इल्म हो चुका कि आसमान और ज़मीन के परवरदिगार ही ने ये मौजज़े दिखाने समझाने को नाजिल फरमाए हैं। ए फिरौन, मैं तो समझ रहा हूँ कि तू यकीनन तबाह और हलाक किया गया है। आखिर फिरौन ने पुख्ता इरादा कर लिया कि इन्हें ज़मीन से ही उखेड़ दे, तो हमने खुद इसे और इसके तमाम साथियों को गर्क कर दिया। इसके बाद हमने बनी इसराइल से फरमा दिया कि इस सरजमीन पर रहो सहो, हाँ जब आखरत का वक्त आएगा हम सब को समेट लपेट कर ले आएंगे। और हमने इस कुरान को हक के साथ नाजिल किया है और ये भी हक के साथ उतरा। हमने आपको सिर्फ खुशखबरी सुनाने और डराने वाला बनाकर भेजा। कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके इसलिए उतारा है कि आप इसे बमुहलत लोगों को सुनाए, और हमने ख़ुद भी इसे बतदरीज नाजिल फरमाया है। कह दीजिए कि तुम इस पर ईमान लाओ या न लाओ, जिन्हें इससे पहले इल्म दिया गया है इनके पास तो जब भी इसकी तिलावत की जाती है वो ठोड़ियों के बल सजदे में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा रब पाक है, हमारे रब का वादा बिला शक को शुबा पूरा हो के रहने वाला है। वो अपनी ठोड़ियों के बल रोते हुए सजदे में गिर पड़ते हैं, और ये कुरान इनकी आजजी और खुशी व खुदू बढ़ा देता है। हम भी अपने गिरेबानों में झांक के कब आखिरी बार रोना आया था कुरान सुन के? कह दीजिए कि अल्लाह को अल्लाह कह कर पुकारो या रहमान कह कर, जिस नाम से भी पुकारो तमाम अच्छे नाम उसी के हैं। ना तो अपनी नमाज बहुत बुलंद आवाज़ से पढ़ो और ना बिल्कुल पोशीदा, بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لے اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک اور ساجی رکھتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی کی ضرورت ہو، اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہے۔ فکبرہ تکبیرہ، سورت شروع ہوئی تھی سبحان اللہ سے، پوری ہو رہی ہے اللہ اکبر پہ، اگلی سورت شروع ہوگی الحمد پہ۔ یہ ہے قرآن کا ربط۔ تو ذرا سا دیکھیے آیت 109 کی روشنی میں صحابہ کرام کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق تھا، کتنے قدردان تھے۔ ابو بکر صدیق بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے، جب قرآن پڑھتے تو اپنے آنسو روک نہ پاتے۔ حضرت عمر کا حال کیا تھا، کوئی خوف زدہ کرنے والی آیت پڑھتے تو ہچکی بن جاتی۔ عائشہ صدیقہ نے قرآن کی آیت پڑھی، وکر نفی بیوتی کن، گھروں میں قرار پکڑو، یہ آیت پڑھتی رہیں اور پورا دن روتی رہیں، اور صحابہ کرام قرآن سن کر عاجزی سے سجدوں میں گر پڑتے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے، پورا ہو جائے، پارا پورا کرنا ہے، سبق پورا، یہ پورا، وہ پورا، اللہ عمل بھی پورا کرا دے۔ تو عمل کے نقطے ہیں، خوشخبری دینا، برے انجام سے ڈرانا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، قرآن کو اہل علم کی طرح سننا۔ اللہ اس سارے پڑھے اور سنے پہ غور اور عمل کرنے والا بنا دے۔ اگلی صورت ہے کہف، دونوں کا ربط بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اس بارے میں ہم اس کی 74 آیتیں پڑھیں گے، 18 نمبر کی سورہ ہے، شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمدللہ الذی سے۔ اس کے شان نزول میں ایک روایت نوٹ کیجئے گا، تفسیر ابن جریر طبرانی کی روایت ہے کہ قریشیوں نے نظر بن حارث، عقبہ بن ابو معید کو مدینہ کے یہودی علماء کے پاس بھیجا کہ تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا پوچھ کے آؤ، ان کے حالات بتاؤ، اور چونکہ ان کے پاس اگلے انبیاء کا علم ہے تو ان سے پوچھو کہ کیا رائے ہے، یعنی کیا یہ سچے ہیں نہیں ہیں، کوئی سوال کوئی جواب۔ تو اس پہ جبرائیل آئے اور سورۃ کہف نازل ہوئی۔ سورۃ کہف کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں، بڑی فیمس سورت بھی اور اہم بھی ہے۔ بیسیکلی اس کے اندر آپ کو 5 ٹاپک ملنے والے ہیں، جس میں پہلا موضوع ہے عقیدے کی آزمائش، اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ پھر اس کا دوسرا موضوع مال اور اولاد سے آزمائش ہوگی تمہاری، یہ باغ والے دو دوستوں کا قصہ ہے۔ تیسرا موضوع ہے شیطان سے آزمائش، تو اس میں آدم اور ابلیس کا قصہ ہے۔ چوتھا ٹاپک ہے علم کا فتنہ، یہ علم سے آزمائش، تو موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے۔ پانچواں ٹاپک ہے حکومت اور طاقت سے آزمائش، تو یہاں ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ اوورال دیکھا جائے تو دنیا کی زندگی میں آزمائشیں آئیں گی، آخرت میں کامیابی کا معیار بنیں گی۔ تو یہ آیتیں بتا کر اللہ نے آپ کو مجھے دیا، کیسے اللہ کی تعریفوں سے شروع ہوتی بھی صورت، عقیدے کی آزمائشوں سے، اصحاب کہف کے قصوں سے لے کر آگے سے آگے جاتے جائیں، اور جتنی بات آپ کو بتائی ہے وہ اس میں ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ دعا یہ کیجئے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آیتوں کا ٹیکسٹ پڑھتے ہیں۔ رکوع نمبر 13 ہے، پہلی 12 آیتیں، ایک گمراہ کن عقیدے کی نفی ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہاں بھی اب کتاب کا لفظ نوٹ کیجئے گا۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لائق ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے، اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں کر دے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ داداؤں کو، یہ تہمت بہت بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، اور یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ یاد ہے آپ کو یہ آیت ہم نے کی تعارف میں، صورت تو بری ہو چکی ہے، جو تعارف آپ کو آج مل گیا الحمدللہ، اس کی روشنی میں ایک ایک چیز واضح ہے۔ تو یہ بخا، یہ لیجیے اپنے اندر، تڑپیے، روئیے کہ اللہ مجھ سے کچھ کام لے لے۔ और वरना क़यामत तो क्या नहीं है। रूए ज़मीन पर जो कुछ है हमने इसे ज़मीन की रौनक का बायस बनाया है, क्या हम इन्हें आसमा लें कि इनमें से कौन नेक अमाल वाला है, और इस पर जो कुछ है हम इसे एक हमवार साफ मैदान कर डालने वाले हैं। अपने घरों को जहन में लाइए, फैक्ट्रियाँ बुर्जियाँ, एक दिन सब पे बिलडोज़र फैल जाएगा। अल्लाह इन सब को बिलडोज करके क्या कर देगा, जुरुजन खुश बंजर। इन्हीं चीज़ों में दिल पड़ा रहता है ना, सब क्रश हो जाएगा। अब किस्सा सुनते हैं। क्या तो अपने ख्याल में गार और कत्बे वालों को हमारी निशानियों में से कोई बहुत अजीब निशानी समझ रहा है। इन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी को आसान कर दे। बस हमने इनके कानों पर गिनती के कई साल इसी गार में पर्दे डाल दिए। यहाँ अपने जवान बेटों को याद करें और दुआएं दें। उम्मत मुस्लिमा का गलबा कब होगा, जब आपके मेरे बच्चे असहाब कहफ की तरह गलबा हक के लिए बिल्कुल खाली हाथ एम्प्टी हैंडेड निकलेंगे और अल्लाह गार में उनको जो कुछ दे रहा है वो आपको भी मिलेगा इंशाल्लाह। विदाउट एफर्ट्स कुछ नहीं मिलता। असल में अल्लाह पे नज़रें लगाने वालों को अल्लाह ताला कैसे काफ़ी होता है, आइए देखिए क्या कहा उन्होंने। फिर हमने इन्हें उठा खड़ा किया कि हम ये मालूम कर लें कि दोनों गिरोहों में से इस इंतहाई मुद्दत को जो उन्होंने गुजारी किसने ज़्यादा याद रखा। पहली आयत के बारे में एक रिवायत है उसैद बिन खुज़ैर से, नमाज में अल्लाह के नबी ने सूरह कहफ पढ़ी। इसी घर में घोड़ा बंधा हुआ था, घोड़े ने उछलना शुरू कर दिया। उसैद ने बिल्कुल ख्याल ना किया और इसको अल्लाह के सपुर्द किया। इसके बाद जब उन्होंने सलाम फेरा तो देखा कि बादल के एक टुकड़े ने इनके सारे घर पे साया कर रखा है। इन्होंने जब अल्लाह के नबी से इसका जिक्र किया तो आपने फरमाया कुरान पढ़ता ही रह क्योंकि ये सकीना है। सकीनत उतरती है कुरान सुनते पढ़ते वक्त, उसी का तज़किरा है। ये बुखारी की रिवायत 3614 है। इसी तरह अबू दरदा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद करेगा दज्जाल के फितने से बचेगा। ये मुस्लिम की रिवायत है 1883। फिर इसी तरह से एक रिवायत से पता चलता है कि आखिरी 10 आयतों को याद करने वाला भी दज्जाल के फितने से महफूज होगा। यह रिवायत भी अबू दरदा से है और तिर्मिज़ी में है, और मुस्लिम में आखिरी 10 आयतों का तज़किरा है। और यह रिवायत जो रखी है आपके सामने ये मुस्तद अहमद की 27516 है। क्या पता चला कि सूरत कहफ बड़ी बरकत वाली सूरत है। हर जुमे को भी इसको पढ़ना होता है और ख़ास तौर पे अब जब इसका आपको तर्जमा समझ आ रहा है, और इसको अलग से भी सुनिए। एक से ज़ायद बार सिर्फ सूरत कहफ की तफसीर हो चुकी है, सटों में तो है ही है। बच्चों के साथ बैठकर सुनिए, यहाँ भी अगर आप चाहते हैं टीनेज बच्चियों के लिए कुछ करना तो सूरह कहफ उसके लिए बहुत ही खूबसूरत है। लोग अक्सर कहते हैं सूरह नूर करा दें बच्चियों को, ये करा दें वो करा दें। नहीं, ईमान का दीप जलेगा ना दिलों में, फिर पर्दे होंगे, फिर वो कपड़े अपने सही करेंगी, फिर वो होंगी। इधर ईमानियात है, हमारे लिए अमल की बात क्या है कि अल्लाह के अजाब से डरना है, नेक अमल करने वाले मोमिनों को खुशखबरी देनी है, बेहतरीन अमल करना है, झूठ नहीं बोलना, ईमान लाना है, और ज़मीन की जीनत को आजमाइश समझना है, और जो हक बात समझ जाए उस पे स्टैंड लेना है, और गलत माहौल से हिजरत करनी है। आगे रुकू नंबर 14:13-17। शिर्क जुल्मे अजीम है, नहनु नकुस्सु अलैका नबहुम बिलहक, हम इनका सही वाक़िया आपके सामने बयान फरमा रहे हैं। ये चंद नौजवान अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने इनको हिदायत में तरक्की बख्शी थी, हमने इनके दिल मजबूत कर दिए थे जबकि ये उठकर खड़े हुए। ये नोट कीजिए, कुछ करेंगे ना फिर दिल मजबूत होगा, बैठकर बातें करने से कभी दिल नहीं जमता। और कहने लगे कि हमारा परवरदिगार तो वही है जो आसमान और ज़मीन का परवरदिगार है, नामुमकिन है कि हम इसके सिवा किसी और को माबूद पुकारें, अगर ऐसा किया तो हमने नहायत ही गलत बात कही। ये है हमारी कौम जिसने इसके सिवा और माबूद बना रखे हैं, इनकी खुदाई की ये कोई साफ दलील क्यों पेश नहीं करते, अल्लाह पे झूठ इफ्तरा बांधने वालों इससे ज़्यादा जालिम कौन है। जब तुम इनसे और अल्लाह के सिवा इनके और माबूदों से किनारा कश हो गए तो तुम भी किसी गार में जा बैठो, तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में सहूलत मुहैया कर देगा। आप देखेंगे कि आफ्ताब बवक्ते तलुखिन के गार से दाई जानिब को झुक जाता है और बवक्ते गरूबिन के बाई जानिब कतरा जाता है, और वो इस गार की कुशादा जगह में है। ये अल्लाह की निशानियों में से है। अल्लाह ताला जिसकी राहबरी फरमाए वो राह रास्त पर है, और जिसे वो गुमराह कर दे नामुमकिन है कि आप इसका कोई कारसाज और रहनुमा पा सकें। ये थे सहाबे कहफ, इन्हीं के नाम पे सूरत है। तो अगर आप देखें तो सहाबे कहफ जैसा ही ईमान सहाबे कराम का था। कॉमन थिंग क्या है, सहाबा में और सहाबे कहफ में हक की आवाज़ पे लब्बैक कही। हम भी अपने लिए नोट करें, हमने भी कहनी है। रब की वाहदानियत को मानने वाले थे, ईमान में भरे हुए थे और बातिल से टकरा जाने वाले थे। फिर इसी तरह बाप दादा के दीन से बेजार थे, उमरा से जिहाद किया, घर बार छोड़कर हिजरत की, फरसुदा रस्म और रिवाजों को कबूल नहीं किया। ये सब करके हुआ क्या, अल्लाह की मदद के मुस्तहक ठहरे। अल्लाह हमें भी इतनी जुर्रत दे। अब यहाँ चूँकि हम दो बातें आज इस बारे में लेके चल रहे हैं, एक तो रदी अल्लाह अन्हुम व रदुअन और दूसरा गलबा इस्लाम, तो आइए ज़रा अस्हाबे कहफ का तकाबुल करते हैं गारे सौर से। बात हिजरत की चल रही है ना, आज शुरू से हिजरत बैते अकबा और सब कुछ, वो पूरा खुलासा ले लीजिए। अस्हाबे कहफ और नबी सल्लम और अबू बकर का गार में ठहरना कैसे हमारे लिए भी नुक्ताए तदब्बुर है। आप देखिए कि असहाबे कहफ का वाक़या ताज्जुब खेज है ना। अभी आप जो सुन रहे हैं ये आमतौर पे तो नहीं होता, ऐसे लगता है कि गार एक इंक्यूबेटर बन गया और उसमें हर चीज़ उनकी मर्ज़ी की हो रही है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के नबी और अबू बकर सिद्दीक जो गारे सौर में रहे थे, वो भी बड़ा ही अजीब वाक़या था। वो गार ऐसा था कि कुफार अगर अपने कदमों को देख लेते ना तो नबी सल्लम दिखते। उस गार की हैयत ही कुछ ऐसी है कि वो ऊपर नहीं जाना पड़ता बल्कि अंदर से ऐसे नीचे कूदता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बादशाह और कौम ने कुछ दिन उनकी तलाश की लेकिन उनको कुछ पता ना चला। इसी तरह मक्का के तमाम मुश्रिक सरदारों ने पीछा किया मगर नबी सल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को ना पा सके। आपको सहाबी का नाम पता है कि जिन्होंने पीछा किया और आप तक पहुँच भी गए थे? सुराका बिन मालिक। तो इस बारे की एक शख्सियत सुराका बिन मालिक भी हैं। अल्लाह के नबी ने उनको इस मौके पे जब वो मुसलमान हुए तो खुशखबरी दी थी कि सुराका तुम्हें मौत नहीं आएगी जब तक तुम किसरा के कंगन नहीं पहन लोगे। तो सुराका बड़े मज़े में थे, अल्लाह का नबी का दौर गुजरा, कहते थे मुझे यकीन है मैं नहीं मरूंगा। अबू बकर के 2 साल गुजर गए, बड़ा यकीन था। फिर उमर के दौर में जंग हुई, किसरा को डिफीट किया, फिर उसके माले गनीमत में कड़े आए थे कंगन। सहाबा का ईमान देखिए, आज तो एक छल्ले पे जान चली जाए 1 ग्राम कितने का हो गया। और उन्होंने वो माले गनीमत जब आया तो सबसे पहले उसमें से कंगन निकाल के कहा कि सुराका ये तेरे हैं, बाकी माले गनीमत बाद में बटा। ये दिल था। अब यहाँ फिर वही थीम लीजिए, कानूनी हदों से आगे बढ़ के साथ देने वाले। माले गनीमत किससे तुम पढ़ चुके, वालमुन्नमा गनीमतुम में खुमुसा हो। साहबा ने अपना हिस्सा छोड़ दिया सिर्फ एक बात पे, और वो बात किसकी थी, लीडर की थी। अल्लाह हमें आज अपने लीडर्स, अपने मेंटोर्स और अपने मुखलिसीन की ये कदर की तौफीक दे कि उनके कहने पे वो पता नहीं कितने किलो के कंगन थे, जिधर मर्जी डाल दो हम आना पाई लिख कर हिसाब करने को तैयार हैं। ये फ़र्क है हमारे और उनमें। और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ था? एक तो सोना मर्दों पे हराम है, लेकिन एक वो कह ले तमसीली तौर पे सुराका ने सोना पहना क्योंकि नबी ने कहा था, क्योंकि उन्हीं की ज़ुबान से तो सुना है ना कि मर्दों पे हराम है। और दूसरी बात कि उसके फिर चंद दिन के बाद सुराका का इंतकाल हो गया क्योंकि नबी की बात पूरी हुई। तो बड़ों की बातों पे कान धरा करें, कभी फ़ायदा होगा आपको। ये बात इसमें से सीखने की आपके मेरे लिए। आगे देखिए, हिदायत में तरक्की करना है हमारे लिए, ये भी अमल का नुक्ता है। अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं पुकारना और उस पर झूठ नहीं बांधना, और दीन के लिए उठ खड़ा होना है, शिर्क नहीं करना, और अल्लाह ताला को ही असल कारसाज मानना है। आगे किस्सा बढ़ता है, आयत 18 से 22, रुकू नंबर 15। अल्लाह का वादा सच है, व तख सबुहम ईकास वहुम रुकूद, आप ख्याल करते हैं कि वो बेदार हैं, हालांकि वो सोए हुए थे। हम इन्हें खुद दाएं बाएं करवटें दिलाया करते थे, क्यों भला बेड सोल ना हो जाए। इनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। अगर आप झांक कर इन्हें देखना चाहें तो ज़रूर उल्टे पांव भाग खड़े होते और इनके रोब से आप पर दहशत तारी हो जाती। लोग कहते देखा कुत्ता, जायज़ है ना, लेकिन किधर था? बाहर था, अंदर नहीं। इसी तरह हमने इन्हें जगा कर उठा दिया कि आपस में पूछ गिछ कर ले। एक कहने वाले ने कहा, क्यों भाई, तुम कितनी देर ठहरे रहे? उन्होंने जवाब दिया, एक दिन या एक दिन से भी कम। कहने लगे, तुम्हारे ठहरने का बखूबी इल्म अल्लाह ही को है। अब तुम अपने में से किसी एक को ये चांदी देकर शहर भेजो, वो खूब देखभाल ले कि शहर का कौन सा खाना पाकीज़ा तर है, फिर इसी में से तुम्हारे खाने के लिए ले आए। और वो बहुत एहतियात और नरमी बरते और किसी को तुम्हारी खबर होने ना दे। अगर ये काफिर तुम पर गलबा पा लें तो तुम्हें संसार कर देंगे या तुम्हें फिर अपने दीन में लौटा लेंगे, फिर तुम कभी भी कामयाब ना हो सकोगे। हमने इस तरह लोगों को इनके हाल से आगाह कर दिया कि वो जान लें कि अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है और क़यामत में कोई शक शक को शुबा नहीं। जबकि वो अपने अमर में आपस में इख्तलाफ कर रहे थे, कहने लगे, इनके गार पर एक इमारत बना लो। और इनका रब ही इनके हाल का ज़्यादा जानने वाला है। जिन लोगों ने इनके बारे में गलबा पाया वो कहने लगे, हम तो इनके आसपास मस्जिद ही बना लेंगे। कुछ लोग तो वो होंगे जो कहेंगे कि असाबे कहफ तीन थे और चौथा इनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे पांच थे और छठा इनका कुत्ता था। गैब की बातों में अटकल के तीर तुक्के चलाते हैं, निशाना देखे बगैर पत्थर चला देने की तरह। कुछ कहेंगे सात हैं, आठवां इनका कुत्ता है, यानी हेड काउंट पे बेतुकी बातें करें, यानी बहसों में पड़ना इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार इनकी तादाद को बखूबी जानने वाला है, इन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। बस आप इनके बारे में सरसरी सी गुफ्तगू ही करें और इनमें से किसी से इनके बारे में पूछ गिछ भी ना करें। क्या पता चला, बेकार बहसों को छोड़ो और अमल की बात करो। मेरे आपके लिए अमल के नुक्ते, होशियारी से काम लेना, बहस ना करना, अल्लाह के वादे को सच्चा समझना, हक परस्तों को दीन से फेरने की कोशिश ना करना और नरमी बरतना, क़यामत के बरहक होने पर ईमान रखना। और अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। आगे है रुकू नंबर 16, 23 से 31, दाइये दीन के लिए हिदायत। इसमें आपके मेरे लिए अमल के बहुत से नुक्ते हैं। वला तकूलन लि शैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा, और हरगिज़ हरगिज़ किसी काम पर यूँ ना कहना कि मैं इसे कल कर दूंगा, जैसे आप मुझे कह के पारा कल पूरा कर दें, मगर साथ ही इंशाल्लाह कह लेना। और जब भी भूले अपने परवरदिगार की याद कर लिया करो और कहते रहना कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा रब मुझे इससे भी ज़्यादा हिदायत के करीब की बात की राहबरी करे। वो लोग अपने गार में 300 साल तक रहे और 9 साल और भी ज़्यादा गुजरे, हिजरी और ईस्वी का फ़र्क है। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही को इनके ठहरे रहने की मुद्दत का बखूबी इल्म है, आसमानों और ज़मीनों का गैब सिर्फ इसी को हासिल है। वो क्या ही अच्छा देखने सुनने वाला है, सिवाय अल्लाह के इनका कोई मददगार नहीं। अल्लाह ताला अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। तेरी जानिब जो तेरे रब की किताब वही की गई से पढ़ता रहे, इसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और इसके सिवा हरगिज़ हरगिज़ कोई जाए पनाह तू ना पाएगा। और अपने आप को इन्हीं के साथ रखा कीजिए जो अपने परवरदिगार को सुबह शाम पुकारते हैं और इसी के चेहरे का इरादा रखते हैं। आप में से सुबह कभी किसने सुना, यानी दूसरा सेशन रूहुल कुरान किसने सुना? आप सबके लिए इसमें खुशखबरी है, सुबह शाम खैर के काम। यानी कभी कभी हम थक जाते हैं ना, एक दफ़ा नेकी करके, तो कभी कभी दो टाइम करके अल्लाह ने जिक्र किया है कि सुबह को भी पुकारते और शाम को भी पुकारते हैं, यानी जितना गुड़ डालते जाएं उतना मीठा होगा इंशाल्लाह। फरमाया उन्हीं के साथ रखा कि यानी अल्लाह के नबी को किन के साथ रहना चाहिए जो सुबह शाम आए। चलिए, खबरदार तेरी निगाहें इनसे ना हटने पाए कि दुनियावी जिंदगी के ठाट बाट के इरादे में लग जा। देख इसका कहना न मानना जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है और जो अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हुआ है और जिसका काम हद से गुजर चुका है। तो आपको मुझे किन लोगों की मायत में रहना चाहिए? जो भाग भाग के और ज्यादा नेकियां करें, इसके बरक्स उनमें नहीं रहना जो लिथार्जिक और इजी गोइंग और बहुत ही अपनी जिंदगी पे रहम खाने वाले हों। वजह क्या है? फिर आप ही ढीले हो जाएंगे। कंपनी से इंसान को इनर्जी मिलती है और ऐलान कर दे कि ये सरासर बरहक कुरान करीम तुम्हारे रब की तरफ से है, अब जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफर करे। जालिमों के लिए हमने वो आग तैयार कर रखी है जिसके शोले इन्हें घेर लेंगे, अगर वो फरियाद रसी चाहेंगे तो इनकी फरियाद रसी इसी पानी से की जाएगी जो तेल की गर्म धार जैसा होगा जो चेहरे को भून डालेगा, और वो बहुत ही बुरी आराम गाह यानी दोजख है। यकीनन जो लोग ईमान लाएं और नेक अमल करें तो हम किसी नेक अमल करने वाले का सवाब ज़ाया नहीं करते, अल्लाह आपके भी अदर को ज़ाया न करे। इनके लिए हमेशगी वाली जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, वहाँ ये सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज़ रंग के नरम और बारीक और मोटे रेशम के लिबास पहनेंगे। किस किस का दिल चाह रहा है जन्नत में जाने को? किस किस को कंगनों का शौक है? किस को प्योर रेशम अच्छा लगता है और वो भी सब्ज़ रंग का और ऊपर गोल्ड की ज्वेलरी? अल्लाह आपके दिल की बातें करता है। खैर, इस पे भी बस नहीं, आप कहेंगे काम बड़ा करना पड़ता है। अल्लाह कहते नहीं, वहाँ तख्तों के ऊपर तकिए लगाए हुए होंगे। क्या खूब बदला है और किस कदर उम्दा आरामगाह है। सूरत काफ की आय 28, साहब कराम की मजलिसों के साथ अल्लाह ने अपने नबी को कहा, आप रखिए कैसी होती थी नबी की मजलिसें। आपको कहते कि कुरैश ने नबी सल्लम से ये दरख्वास्त की थी कि आप छोटे लोगों को अपनी मजलिस में ना आने दिया करें, ये क्यों आके बैठ जाते हैं? मसलन बिलाल, अम्मार, सहैब, खबाब, इब्ने मसूद वगैरह जैसे, उनको अच्छे नहीं लगते थे। अल्लाह ने साहबा के हक में यह आयत 28 नाजिल कर दी कि नबी पैसे वालों के साथ नहीं कुरान वालों के साथ बैठता। बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि साहबा की ये खूबियाँ उनको जन्नत में ले गईं, अल्लाह मुझे आपको भी इसी पे रखे। फिर इसी तरह से आय 31-30 में देखिए सहाबा और मुख्सिनीन को जन्नत में मिलने वाले इनामात का तस्करा है। हमेशगी की जन्नत, सोने के कंगन, खूबसूरत रेशमी लिबास, ऊंची मसनदें और बेहतरीन आरामगाहें। आप मैं भी कुछ कर लें ताकि शायद हमें भी कोई उम्मीद लग जाए। क्या करें, रब को याद करना है, अल्लाह की किताब पढ़कर सुनानी है, अपने नफ्स को रब को पुकारने वालों के साथ जमाए रखना है, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं करनी और हद से नहीं गुजरना, कुफर नहीं करना। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।